ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासम्, ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय शिवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद महाप्रभु आविर्भाव महोत्सव की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, ताई ओर हरि प्रेमनंदे हरि विभो। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज श्री चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य संगी हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के स्वांश हैं, कृष्ण लीला में कृष्ण के साथ जो हमेशा साथ में बलराम जी रहते हैं, भगवान राम के साथ में जैसे लक्ष्मण जी रहते हैं, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु रहते हैं जो स्वयं बलराम हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद महाप्रभु के महिमा का उद्घाटन करते हुए सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के चरण कमलों में वंदना करते हैं। मैं उन भगवान रूप श्री नित्यानंद को नमस्कार करता हूँ जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर मूर्ख भी उनके स्वरूप को पहचान सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, और जय हो श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की। 63 श्लोक के इसके पूर्व में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 6 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु के महिमा का उद्घाटन किया है, और विगत और पूर्व में 5 श्लोकों में नित्यानंद महाप्रभु के महिमा का वर्णन करते हैं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम। बलराम ही नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, इसलिए कृष्ण बलराम जैसे ब्रज भूमि में रमण किए, रमण रेती में, वृंदावन में, गोकुल में, गोवर्धन में, वृंदावन के ब्रज के समस्त भूमि में कृष्ण बलराम अपनी बाल लीलाओं को प्रस्तुत की, उसी तरह से नवदीप में जो गुप्त वृंदावन है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में लीला किए। तो सर्व अवतारी कृष्ण, समस्त अवतारों के जो उस हैं, उद्गम हैं, स्वयं कृष्ण हैं, जो स्वयं भगवान हैं। तहार द्वितीय देह श्री बलराम, बलराम उनके दूसरे देह हैं। मतलब भगवान के ऐसे तो अनंत अवतार हैं, अनंत हैं, एक रूप में भी अनंत हैं। एको अहम बहु श्यामी, भगवान एक भी हैं और अनेक भी हैं, फिर भी एक हैं। बहु वचन नहीं, द्वितीयो नास्ति, फिर भी एक ही रहते हैं, एक वचन में ही। तो बलराम जी उनके दूसरे देह हैं, एक ही स्वरूप हैं, तत्व एक ही हैं, दो रूप में हैं, लीला करने के लिए दो रूप में प्रकट हुए हैं। बलराम जी कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो पतित पावन है, जो महाबदन्य है, तो साथ में जैसे कृष्ण बंसी धारण करते हैं, बलराम जी हल धारण करते हैं, मुसल धारण करते हैं, बलराम जी हलायुध हैं, हल जिनका आयुध है, और कृष्ण वृंदावन में बंसी धारण करते हैं, बंसीधारी मोर पिक्ष मुकुट धारण करते हैं, स्वरूप एक ही है लेकिन लीला के दृष्टि से भिन्न भिन्न लगते हैं, उनका पोशाक भिन्न है, उनका आयुध भिन्न है, उनका मुकुट भिन्न है। तो इसको और विस्तार से स्पष्ट करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कई स्वरूप दो हैं, भिन्न भिन्न मात्र काय, केवल बाह्य दृष्टि से भिन्नता है लेकिन समानता है, अंत से समानता है। एक ही स्वरूप दो हैं, भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। ये दोनों एक ही हैं। जैसे मिश्री को मिश्री के भिन्न भिन्न खिलौने बनाए जाते हैं, मिश्री के घोड़े भी बनाए जाते हैं, हाथी भी बनाए जाते हैं, मिश्री के मटके भी बनाए जाते हैं। घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, जब रोते हैं, तो पर्व त्योहार में मिश्री को पाक करके घोड़े हाथी भी बना दिए जाते हैं खेलने के लिए। तो एक बच्चा घर में रो रहा था, माँ ने कहा कि क्यों रो रहे हो, तो कहा कि भूख लगी है। तो माँ ने कहा कि लो दो हाथी खा जाओ। तो घर में मेहमान आए थे, कह कि अरे बाप रे बाप, कैसा बालक है जो हाथी को खा जाता है। माँ ने कहा कि क्यों रो रहे हो, ये दो लो हाथी खा जाओ। मेहमान बगल कमरे में थे, वो सुन रहे थे, देख नहीं रहे थे। तो मेहमान चकित रह गए कि दो हाथी कैसे खा जाएगा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बाहर आए तो देखे कि वो मिश्री के पाक के बनाई हुई हाथी को ही बच्चा खा रहा था। तो मिश्री का चाहे हाथी बनाइए या घोड़ा बनाइए, एक ही तत्व है। तो एक ही स्वरूप दो हैं, भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। वे दोनों एक ही हैं, कृष्ण और बलराम दोनों एक हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक ही हैं, लीला के दृष्टि से भिन्न हैं। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय, वे दोनों एक ही है, केवल शरीर में अंतर है। वे कृष्ण के प्रथम शरीर अंश काय भी हुए हैं और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक बनते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि बलराम कृष्ण के स्वांश हैं, प्रथम अंश हैं। अतएव कृष्ण तथा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। ईश्वर का प्रथम अंश होने के कारण बलराम प्रथम चतुर्व्यूह में प्रधान विग्रह हैं और भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में उनके अग्रणी सहायक हैं। श्री कृष्ण नव दीपे श्री चैतन्य चंद्र, वही कृष्ण नव दीप में चैतन्य चंद्र के रूप में है। प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए चंद्रोदय, चंद्र का उदय हो रहा है। कौन चंद्र है? गौर चंद्र। श्री चैतन्य चंद्र जो है, जो कृष्ण है, वही नवदीप में गौर चंद्र के रूप में प्राची दिशा में उदित हो रहे हैं, जो मायावाद, अज्ञानवाद, विवादवाद, अनेक वादों को जो तिरोहित करेंगे। ढोंगवाद, पाखंडवाद, मायावाद का बहुत प्रचलन हो गया था। बंगाल में अनेक वाद थे, मायावाद, पाखंडवाद, अनेक जादू टोनावाद वाद विवाद होता ही रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे माया के अंधकार को दूर करने के लिए गौर चंद्र के रूप में उदित हुए। चंद्रमा रात्रि में प्रकाश देता है, रात्रि अंधेरा का प्रतीक है, तमस का प्रतीक है। उस समय पूरा संसार तमोगुण में डूब रहा था, इसलिए चंद्रमा से उपमा दी गई है। चंद्रमा रात्रि में जो है अंधकार को भगाता है। तो सही कृष्ण नव दीपे श्री चैतन्य चंद्र, सही बलराम संगे श्री नित्यानंद, वही भगवान कृष्ण नवदीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और बलराम उनके साथ नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए। ऐसे बलराम जी जो चतुर्व्यूह में प्रधान है, मूल संकर्षण भी इनको कहा जाता है, संकर्षण के मूल हैं बलराम जी। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रदुम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। संकर्षण जो है वो बलराम है। अब मूल संकर्षण रूप में कृष्ण लोक में रहते हैं। कृष्ण लोक का भी तीन रूपों में विभाजन हुआ है, द्वारका, वृंदावन और गोकुल। श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने। संकर्षण कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई, चपयोदीप साई। तीन विष्णु है, कारणोदक साई, गर्भोदक साई और क्षीरोदक साई, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं। तो श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके अंश तथा अंशांश संकर्षण शेष नाग तथा विष्णु हैं, और जो क्रमशः कारण सागर में, गर्भ सागर में और क्षीर सागर में निवास करते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरी कौन कृष्ण सेवन, और कृष्ण के सेवा करते हैं हमेशा। संकर्षण जो है अर्थात बलराम जो मूल संकर्षण है, वे भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं। राम अवतार में लक्ष्मण के रूप में जब भगवान वन में गए तो सेवा किए, कृष्ण अवतार में बड़े भाई के रूप में बलराम के रूप में उनकी सहायता किए। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में वही हैं। से बलराम जी बड़े भाई के रूप में आए, लेकिन लक्ष्मण जी छोटे भाई के रूप में सेवा किए। तो भगवान राम के आदेश का पालन करना पड़ता था, बिना राम के आदेश का कुछ नहीं कर सकते थे। तो स्वतंत्र कुछ नहीं कर पाते थे और कुछ माना भी नहीं कर सकते थे। जो राम का आदेश वो करना है, तो मन ही मन उनको बहुत घुटन महसूस होता था और सोचते थे कि अब अगले अवतार में बड़ा भाई बनकर आऊंगा, अब छोटा भाई नहीं बनूंगा। रामेरा चरित्र सब दुखेरा कारण, स्वतंत्र लीलाए दुख सहे न लक्ष्मण। भगवान राम के कार्यकलाप दुखों से पूर्ण थे, किंतु लक्ष्मण ने स्वेच्छा से उस दुख को सहन किया। जब 14 वर्ष भगवान राम वन में जाने लगे तो दशरथ जी नहीं कहे थे, कैकेयी ने कहा था कि 14 वर्ष राम वनवासी। दशरथ जी कभी कह नहीं पाए, कैकेयी कही कि राम को 14 वर्ष वनवास होना चाहिए तापस वेश में। तो भगवान राम बन जाने लगे तो लक्ष्मण जी कहे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो पिता स्त्री के अधीन होकर के ऐसा आदेश देता है, इस आदेश को आप ठुकरा दीजिए। कहां आप राजा बनने वाले थे, आपको राजा बनने के लिए कहा गया था और पूरे अयोध्या में इसकी तैयारी भी हो गई थी, अयोध्या में उत्सव भी हो रहा था, राज्याभिषेक का उत्सव मनाया जा रहा था। तो लक्ष्मण जी कहे कि ये ठीक नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी आदेश दे नहीं सकते थे, छोटे भाई थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि इस आदेश को न माना जाए। बहुत दुखी हुए अंत में, रामेरा चरित्र सब दुखेरा कारण, स्वतंत्र लीलाए दुख सहे न लक्ष्मण। और वन में भी जब गए तो भगवान राम बलकल धारण किए, वृक्षों के छाल और पत्ते पहने और केश में बट वृक्ष का दूध लगा करके जटा बनाए। तो ये सब दुख लक्ष्मण जी को सहन नहीं हो रहा था, जो राजसी वेश धारण किए थे अब बलकल धारण कर रहे थे, वृक्षों के छाल को पत्तों को पहन रहे थे, वस्त्र आभूषण त्याग कर दिए और नग्न पैरों से चल रहे थे। जिनके चरण कोमल हैं वो कुश कांट आदि के ऊपर चल रहे हैं। नित्यानंद स्वरूप पूर्व हैया लक्ष्मण, लघु भ्राता हैया करे रामेर सेवन। नित्यानंद स्वरूप पूर्व जन्म में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने भगवान राम की सेवा उनके छोटे भाई के रूप में की थी। शंकर संप्रदाय में सन्यासियों में ब्रह्मचारियों को कई नामों से पुकारा जाता है। हर सन्यासी के कुछ सहायक होते हैं, जो सन्यासी होते हैं उनके सहायक ब्रह्मचारी होते हैं और जो राजा होता है उसके सहायक मंत्री होते हैं, जो बड़ा भाई होता है उसके सहायक छोटे भाई होते हैं और रघु वंश में बड़ा भाई ही राजा बनता है। रघुवंशियों में प्रथा है कि बड़ा भाई ही राजा होता है। यदु वंश में भी पहले भारत वर्ष में जो बड़ा भाई होता वही राजा होता था, छोटा भाई सेवक होता था। तो लक्ष्मण जी छोटे थे इसलिए हमेशा भगवान के सेवा में रहते थे, उनके आदेश का पालन करते थे। नित्यानंद प्रभु ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी सन्यास नहीं लिया, ब्रह्मचारी के रूप में उनका नाम नित्यानंद स्वरूप था। अतः जिस सन्यासी के आश्रम में रह रहे थे वह तीर्थ आश्रम उपाधिधारी रहा होगा, क्योंकि ऐसे सन्यासी का सहायक ब्रह्मचारी नित्यानंद स्वरूप कहलाता है। तो नित्यानंद प्रभु का नाम के आगे स्वरूप लगा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं उनके नाम क्या गया तीर्थ प्रकाश या स्वरूप लगा रहता है। तो नित्यानंद प्रभु शायद पहले मायावादी सन्यासी के सहायक थे, कि उनके नाम के आगे नित्यानंद स्वरूप लगा है। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हैया लक्ष्मण, लघु भ्राता हैया करे रामे रसेवन। तो राम सेवा में जब थे तो कभी कभी कुछ ऐसा निर्णय लेना पड़ता था, भगवान राम ऐसा निर्णय लेते थे जो राम को करना पड़ता था। भगवान राम के कार्यकलापों से बहुत विघ्न थे, निषेध करीते नाते, निषेध करीते नारे याते छोटे भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। मन में बहुत दुख होता था लेकिन निषेध नहीं कर सकते थे, आज्ञा पालन करना पड़ता था। छोटे भाई के रूप में भगवान राम को उनके संकल्प से रोक नहीं सकते थे, अतः मौन बने रहते थे, भले ही मन ही मन दुखी थे। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हिला सेवार कारण, कृष्ण के कराइला नाना दुख आस्वादन, सुख आस्वादन। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वे बलराम उनकी मन भर सेवा करने एवं सभी प्रकार के सुखों का भोग कराने के लिए उनके बड़े भाई बने। बलराम जी बड़े भाई बनकर कृष्ण लीला में आए, और बड़ा भाई जो कहेगा कृष्ण को कहते बैठो तो बैठना पड़ता था, कृष्ण को कहते थे कि खाओ तो खाना है। अब बड़ा भाई बनकर आए हैं, छोटे भाई में अधीन थे लेकिन बड़े भाई बलराम जी बनकर आए हैं, तो बलराम जी जो आदेश करते हो कृष्ण को पालन करना पड़ता था। तो बलराम जी कभी कभी कहते थे कि विश्राम करो, सो, कहाँ जा रहे हो। कभी कभी कृष्ण अर्धरात्रि में रासलीला में जाते थे तो बलराम जी रोक देते थे, कहाँ जा रहे हो, सो। अब बलराम जी बड़े भाई हैं तो इसलिए कृष्ण को उनके आदेश का पालन करना पड़ता है। कभी कभी कृष्ण को नहीं चाहते हुए भी बलराम जी के आदेश का पालन करना पड़ता था। जैसे राम अवतार में लक्ष्मण जी को करना पड़ता था। से कहीं कहीं किसी किसी पुराणों में है कि भगवान राम ने जब सीता का त्याग किया था तो लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे, लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे तो भी राम का आदेश था तो आदेश का पालन करना पड़ा। तो उस समय भी लक्ष्मण जी संकल्प लिए कि अब छोटा भाई बनकर नहीं आऊंगा, अब जब भी आऊंगा बड़ा भाई बनकर आऊंगा। लघु भागवतामृत में विष्णु धर्मोत्तर का संदर्भ देते हुए बतलाया गया है कि राम वासुदेव के अवतार हैं और लक्ष्मण संकर्षण के अवतार हैं, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार हैं, जो चार व्यू है। पद्म पुराण में रामचंद्र को नारायण कहा गया है तथा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः शेष चक्र तथा शंख कहा गया है। स्कंद पुराण में स्कंद पुराण के राम गीता में लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न को भगवान राम के तीन परिचारक कहा गया है, तीन सेवक के रूप में कहा गया है। भगवान राम के तीन सेवक लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सही अंश लैया ज्येष्ठ कनिष्ठाभिमान, अंशांश रूपे शास्त्रे करे व्याख्यान। कृष्ण तथा बलराम बड़े या छोटे भाई के रूप में प्रकट होते हैं किंतु शास्त्रों में उन्हें आदि भगवान तथा उनका अंश बलराम बताए गए हैं। ब्रह्म संहिता में भी श्री चैतन्य सही कृष्ण ब्रह्म संहिता में जैसे काग्रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन, उसी का चैतन्य चरितामृत में अनुवाद किया कि श्री चैतन्य से ही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण हैं। महाभारत में, रामायण में, श्रीमद् भागवतम में, गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में, सब जगह यह प्रमाण के साथ कहा गया कि चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण है। श्री चैतन्य से ही कृष्ण नित्यानंद राम, और नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रे काम। श्री चैतन्य ही भगवान कृष्ण है और नित्यानंद भगवान बलराम है। नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है। बलराम जी सेवक भगवान है, सेवा के लिए हैं। वृंदावन में भी माँ जसोदा बलराम को साथ में भेजती है, गोचारण में या कोई भी कार्य में माँ जसोदा कृष्ण के साथ में बलराम को भेजती है। किसी किसी लीला में बलराम जी नहीं जाते, जैसे काली दमन में बलराम जी नहीं, बलराम को नहीं लिए, कृष्ण चोरी से भाग गए कि बलराम जी रहेंगे तो जमुना में कूदने नहीं देंगे। बलराम जी रहेंगे तो कैसे जमुना में जाएंगे, जमुना में कूदेंगे नहीं तो काली का दमन कैसे करेंगे। तो कभी कभी कृष्ण चोरी से भाग जाते थे, काली दमन में अकेले गए थे। जो विषाक्त जमुना का जल जो विषैला हो गया था, जहां पशु पक्षी भी उसके हवा से मर जाते थे, पक्षी भी ऊपर से गिर जाते थे, इतना जल विषाक्त हो गया था। वहां के वृक्ष भी जमुना के जो किनारे बंद थे वो भी सूख गए थे। वृंदावन की सुंदरता जो है नष्ट हो रही थी, जो भी पशु वहां पानी पीते थे मर जाते थे। तो कृष्ण देखे कि वृंदावन में जहां मैं लीला करने आया हूं, जमुना में विहार करने आया हूं, और कालिये जो है जमुना को दूषित कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। जैसे आजकल जमुना को प्रदूषण से बचाने का प्रयास किया जा रहा है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, जो बड़े बड़े महानगरों के जो प्रदूषित पानी है वो कालिये नाग की तरह हैं, जमुना के सौंदर्य को दूषित कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो पानी है वो कालिये नाग की तरह उसको विषाक्त कर दिया है। तो इसको कैसे शुद्ध किया जाए, इस कालिये को कैसे भगाया जाए। भक्त लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कालिये नाग को कैसे भगाया जाए। जो जमुना किनारे बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनमें जो खराब जो दूषित जल है उसमें बहा दिया जाता है। तो भगवान कृष्ण भी विचार कर रहे थे कि जमुना जी में जो कालिये रह रहा है इसको कैसे भगाया जाए। अब बलराम के साथ में तो हो नहीं सकता है, बलराम जी हमेशा कृष्ण के रक्षा के लिए हैं, सेवा के लिए हैं। तो कृष्ण अकेले उस दिन गए थे और जाकर के जमुना जी में कालिये को का मर्दन किए। तो माँ जसोदा को यह खबर लगी तो बलराम को कहे कि तुम कृष्ण के साथ क्यों नहीं रहा, अगर तुम साथ रहता तो कृष्ण जमुना जी में नहीं जाते। तो हमेशा कृष्ण अंगरक्षक की तरह, बलराम हमेशा अंगरक्षक की तरह कृष्ण के साथ रहते हैं। अक्रूर जी जब नंदगांव से कृष्ण बलराम को लेकर जा रहे थे तो अक्रूर को भय हो रहा था कि कृष्ण बलराम को कंस मार देगा। तो अक्रूर के भय को दूर करने के लिए कृष्ण ने कौतुक रचा। जैसे अक्रूर जी संध्या वंदन शाम हो गया था या दोपहर, सुबह रथ लेकर चले थे या दोपहर हुआ होगा, दोपहर में लोग संध्या वंदन करते हैं या शाम को, प्रातः काल तो कर लिए थे तो दोपहर का समय हुआ होगा। जमुना जी में स्नान करने गए तो देखे कृष्ण बलराम जल में हैं, फिर बाहर आए तो बाहर भी हैं, फिर जल में गए तो बलराम जी शेष नाग हो गए और उस पर कृष्ण शयन कर रहे हैं। कृष्ण के शयन करने के लिए बेड बनते हैं, बलराम जी शेष सैया बन जाते हैं, प्लस सेवा करने के लिए, सेवक भगवान है। तो भगवान यहाँ पर नित्यानंद प्रभु भी सेवक भगवान हैं, सेवा के लिए हैं। श्री चैतन्य श्री कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद की महिमा का सागर अनंत और अगाध है। उनकी कृपा से ही मैं इसकी एक बूंद का स्पर्श कर सकता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बिना नित्यानंद की कृपा के मैं इस सागर का स्पर्श नहीं कर सकता हूँ। जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जो कृष्ण कथा का जो सागर है, उसका एक बिंदु का एक कणिका का भी मैं स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे तभी उस कथा सागर का मैं आस्वादन कर सकता हूँ या करा सकता हूँ। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कण स्पर्शी मात्र से कृपा तहार। नित्यानंद प्रभु के बिना कृपा के चेतन महाप्रभु को भी हम नहीं समझ सकते हैं। नित्यानंद प्रभु जो है एक तरह से चैतन्य को समझने के लिए गुरु के रूप में है। बिना गुरु कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है, तो नित्यानंद प्रभु गुरु रूप में भी हैं और भक्तों का ज्ञान का मार्गदर्शन करते हैं। तो नित्यानंद महिमा से, उनकी महिमा सागर की तरह, जैसे सागर में अनेक लहरें उठती हैं, सागर में अनेक बड़े बड़े मगरमच्छ घड़ियाल रहते हैं, सागर को पार करना बड़ा कठिन है। अगर सागर में कोई प्रवेश भी कर जाए तो उसमें मगरमच्छ होते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, निगल जाती हैं। तो सागर में कैसे पार कर सकते हैं, तो नौका या जहाज के ऊपर। तो नित्यानंद प्रभु जहाज के समान है, इनका आश्रय लेकर के, इनके चरण कमल रूपी नौका का आश्रय लेकर के ही कोई चैतन्य महाप्रभु को समझ सकता है। नित्यानंद की महिमा सागर अनंत और अगाध है, उनकी कृपा से ही मैं उसकी एक बूंद का स्पर्श कर सकता हूँ। आर एक सुन तार कृपार महिमा, अधम जीवेर चढ़ाई ल ऊर्ध सीमा। कृपया उनकी दूसरी कृपा की महिमा सुने, अनंत महिमा से युक्त हैं। उन्होंने पतित जीव को सर्वोच्च सीमा तक उठाया है। जो नित्यानंद प्रभु हैं, उनकी कृपा से ही पतित जीवों का उद्धार होता है। वेद गुह्य कथा यही आरोग्य अजोग्य कहिते, तथापि कहिते तार कृपा प्रकाशिते। जो बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, इनकी कृपा से ही पतित जीवों का उद्धार होगा। ये वेद गुह्य, वेदों में भी बहुत गुह्य रखा गया है, लेकिन कृष्णदास गोस्वामी इसको प्रकट करने का दुस्साहस करें कि मैं दुस्साहस कर रहा हूँ। जो नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं, वेद गुह्य है, बहुत गुह्य है, इसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। तथापि कहिते तार कृपा प्रकाशिते, यह उचित नहीं है, लेकिन फिर भी इसे वेदों के समान ही गुप्त रखना चाहिए, फिर भी मैं इसे कहने का प्रयास कर रहा हूँ। उल्लास उपरी लेखो तोहार प्रसाद, नित्यानंद प्रभु मोर क्षमा अपराध। कहते हैं नित्यानंद प्रभु इस अपराध को क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे लीला का उद्घाटन करने जा रहा हूँ जो वेदों में भी गुप्त रखा गया है। गुह्य है, अवधूत गोसाई एक वृत्त प्रेम धाम, मीन केतन राम दास है ये तार नाम। नित्यानंद प्रभु के एक नौकर थे, उनका नाम था मीन केतन राम दास, जो प्रेम के आगार थे। मीन केत राम दास, क्या घटना हुआ इसका वर्णन कर रहे हैं। हमारा लाए अहोरात्र संकीर्तन, ताहाते आईला है तो पैया निमंत्रण। मेरे घर में अखंड संकीर्तन था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। अतएव आमंत्रित किए जाने पर वह वहां आया। महाप्रेमय ते हो बसीला आंगने, सकल वैष्णवतार बंदीला चरणे। भावजन्य प्रेम में लीन वह मेरे आंगन में बैठ गया और सारे वैष्णव उनके चरणों में सिर झुकाते रहे। नमस्कार करीते कार ऊपर एते चढ़े, प्रेम कारे बंसी मारे कहाँ के चापड़े। इस प्रेम की प्रसन्नता में वह कभी नमस्कार करने वाले के कंधे पर चढ़ जाता, कभी वह अन्यों को अपनी बांसुरी से मार बैठता और उन्हें चप्पड़ भी मार देता था। ए नयन देखीते अश्रु है मनयार, सही नेत्र अवच्छिना बड़े अश्रुधार। जब कोई मीन केतन रामदास की आंखें देखता तो उसके नेत्रों से भी अश्रु बह चलते, क्योंकि मीन केतन रामदास के नेत्रों से अश्रु की निरंतर धारा बहती रहती थी। कभू कोन अंगे देखी पुलक का कदम्ब, एक ही अंगे जाए तार आर अंगे कम। कभी उसके शरीर के कुछ भागों में कदम फूलों के समान आनंद की उमंगे उठती थी, जैसे कदम का फूल होता है, बहुत कोमल होता है कदम का फूल। आप लोग देखे होंगे कदम का फूल, वृंदावन में कदम फूल की कई प्रजातियां हैं। ये केली कदम है, टेर कदम तो जगह का नाम है, एक कदम है और एक केली कदम है। एक का फूल बड़ा होता है, एक का छोटा होता है। तो कदम जो है वृंदावन में भी कदम, भगवान की लीला में कदम है और एक और वृक्ष होता है, कुंज होता है, एक टेरी होता है और एक वृक्ष जो काला होता है जो मंदिर में है, कृष्ण बलराम मंदिर में है, तमाल वृक्ष। ये जब कुछ मुख्य मुख्य वृक्ष हैं, तमाल वृक्ष, कदम, टेरी, चंपक लता, अनेक वृंदावन में सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। तो कदम वृक्ष का जो फूल है बहुत कोमल होता है, स्पर्श करने से ही झड़ जाता है। तो उनके शरीर में कदम वृक्ष जैसे सुगंध निकल रहे थे। नित्यानंद जब भी वह नित्यानंद प्रभु का नाम लेते थे तो विस्मित हो जाते थे। मीन केतन रामदास, तो वहां जब नित्यानंद प्रभु का स्मरण करके मुग्ध हो जाते थे तो वहां एक गुणारो मिश्र नामक सम्मानित ब्राह्मण भी थे, जो अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे थे। उसी समय नित्यानंद प्रभु का आगमन होता है। आंगने आसिया तेहो ना कैला संभास, तहां देखी क्रुद्ध हैया बले रामदास। जमीन के तन आंगन में बैठा था तो इस ब्राह्मण ने उसका आदर नहीं किया, यह देखकर श्री रामदास क्रुद्ध हुए और बोले, यही तो द्वितीय सूत्रम हर्षण नहीं किया यह देख तारा देखी बल देव देखी इच्छा न कैला प्रदुगम। नैमिषारण्य में एक बार रोम हर्षण कथा कर रहे थे, वहां बलराम जी आए तो उनका सम्मान नहीं किए, तो वही करें कि ये भी रोम हर्षण की तरह है। नित्यानंद प्रभु आए हैं, उनके सेवक हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए। अर्चा विग्रह की सेवा छोड़ करके भी स्वयं बलराम जी आए हैं नित्यानंद, तो उनका सम्मान होना चाहिए। यहाँ मैं दूसरा रोम हर्षण सूत्र देख रहा हूँ, जो न तो भगवान बलराम को देखकर उठकर खड़ा हुआ, नहीं सम्मान प्रदर्शित किया। एता बलि नाचे गाए करे संतोष, कृष्ण कार्य करे विप्र ना करी रोष। यह कहकर वह जी भर कर नाचने गाने लगा, लेकिन वह ब्राह्मण क्रुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि तो वह भगवान कृष्ण की सेवा में लगा था। मीन केतन रामदास नित्यानंद प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था। जब वह कृष्णदास कविराज के घर में घुसा, तो उस समय गुणारव मिश्र नामक पुरोहित ने, जो उनके घर में स्थापित अर्चा विग्रह की पूजा कर रहा था, तो उसका सम्मान नहीं किया। ऐसी घटना नैमिषारण में ऋषियों की सभा में रोम हर्षण सूत्र के बोलते समय घटी थी, जब प्रवचन कर रहे थे। भगवान बलदेव उस सभा में प्रविष्ट हुए तो रोम हर्षण सूत्र व्यासासन पर बैठे थे, अतः भगवान बलदेव को नमस्कार नहीं कर पाए। गुणाड़व के आचरण से ऐसा लगता है कि नित्यानंद के प्रति उसके मन में सम्मान नहीं था। यह बात मीन केतन रामदास को नहीं भाई। इस कारण मीन केतन रामदास की मनोवृत्ति भक्तों द्वारा कभी निंदित नहीं होती। आशीर्वाद उत्सव समाप्त होने पर मीन केतन रामदास हर एक को आशीर्वाद देकर चले गए। उस समय मेरे भाई के साथ उनकी कुछ विवाद हो गई। कृष्णदास कविराज इस घटना का जिक्र कर रहे हैं कि मेरे भाई के घर में नित्यानंद प्रभु आए थे, लेकिन उनका समुचित सम्मान नहीं हो पाया था। चैतन्य प्रभुते तार सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रति तार विश्वास आभास। मेरे भाई को चैतन्य महाप्रभु में अटूट श्रद्धा थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु में नहीं थी। मेरे भाई को चैतन्य महाप्रभु में अटूट श्रद्धा थी, किंतु नित्यानंद में तनिक भी श्रद्धा न थी। यह जानी रामदासेर दुख हिला मने, तबे तब भ्रातेरे आमी करी न भर्सने। तो रामदास मीन के तन रामदास ने इनके भाई को खूब भर्सना किया कि तुम्हारा नाश हो जाएगा, दोनों एक ही हैं, ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों एक ही हैं, ये लीला के लिए दो देह में प्रकट हुए हैं, तुम्हें अंतर मत करो। यह जानकर रामदास मन ही मन खिन हुआ, तब मैंने अपने भाई को डांटा फटकारा। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद ना मानत तुम्हार हृदय सर्वनाश। मैंने उससे कहा, ये दोनों भाई एक शरीर जैसे हैं, ये दोनों एक रूप हैं, यदि तुम भगवान नित्यानंद में श्रद्धा नहीं रखते हो तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। एकते विश्वास अन्य ना करो सम्मान, अर्थ कुकुटी न्याय तुम्हार प्रमाण। यदि एक में तुम्हारा विश्वास है, चैतन्य महाप्रभु को मानते हो कि स्वयं भगवान है, किंतु दूसरे के प्रति अनादर है, तो तुम्हारा तर्क अर्ध कुकुटी न्याय के समान है, जिसमें आधी मुर्गी का तर्क स्वीकार किया जाता है। जैसे मुर्गी के एक पक्ष को, जैसे एक व्यक्ति ने मुर्गी रखा था, उसको अर्ध कुकुटी न्याय बोलते हैं, तो मुर्गी को दाना खिलाना पड़ता था, तेजी सोचा कि मुर्गी का जो पीछे का भाग है बड़ा बहुमूल्य है, अंडा देती है, और आगे का जो मुंह है बहुत दाना खाता है। तो आगे का सिर काट दिया मुर्गी का कि इसको दाना नहीं खिलाना पड़ेगा। वो अंतर मानता था कि दो दो अंग को अलग कर दिया, मुंह को अलग कर दिया, तो अंडा देना बंद हो गया। दोनों सब अंग मिलकर एक ही हैं। सिर को अलग कर देने से शरीर का कोई महत्व तो नहीं रहता है। तो नित्यानंद प्रभु उनके देह हैं। चेतन महाप्रभु से पृथक मानना मतलब अर्ध कुकुट न्याय की तरह है। से मुर्गी के सिर को कोई काट दे तो उसका शरीर व्यर्थ है, निरर्थक है, फिर मुर्गी या अंडा कैसे देगी। सिर को अलग कर दीजिए तो शरीर व्यर्थ है। बिना सिर कोई शरीर चलता है, नहीं चलता है। बिना शरीर का हम लोग मुर्दा को भी नहीं देखे हैं। बिना शरीर अगर कोई यहाँ आ जाए तो सब लोग भाग जाएंगे कि भूत प्रेत आ गया। बिना हाथ का लोग आते हैं, बिना पैर के भी लोग आते हैं, बिना आंख के भी लोग आते हैं। दो पैर नहीं है फिर भी लोग आते हैं। यहाँ किसी का यहाँ तक पैर कटा हुआ है, किसी का दोनों हाथ नहीं है, लेकिन बिना सिर आप लोग देखे हैं कि कोई बिना सिर आ गया है नहीं। बिना सिर कोई जीवित रह ही नहीं सकता है। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु के देह है नित्यानंद प्रभु, ये कहीं देह है, उनमें कोई अंतर नहीं है। ये दोनों भाइयों को ये दोनों भाई ये कहीं हैं, भिन्न भिन्न लीला के लिए दो देह धारण किए हैं। क्रुधा हैया बंसी मारी चले रामदास, ततक काले अमार भ्रातर हैला सर्वनाश। अतः कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहे कि तब श्री रामदास क्रोध में अपनी बंसी तोड़ डाली और उसी समय मेरे भाई को कहे कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। यही तक कहिला तार सेवक का प्रभाव, आरे एक कही तार दया स्वभाव। इस तरह मैंने नित्यानंद के सेवकों की शक्ति का वर्णन किया है। अब मैं इनकी कृपा की दूसरी विशेषता वर्णन करूंगा। भाई के भर्सनो मुई लया यही गुण, सही रात्रे प्रभु मारे दिला दर्शन। उस रात भगवान नित्यानंद मुझे स्वप्न में दिखाई पड़े, क्योंकि अपने भाई की भर्सना करने मैंने अच्छा कार्य किया था। तो अपने भाई को कृष्णदास कविराज गोस्वामी डांटे कि तुमने अपराध किया है, लेकिन नित्यानंद प्रभु बड़े कृपालु हैं। नैहाटी के निकटवर्ती गांव झामटपुर में नित्यानंद प्रभु मुझे स्वप्न में दिखे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते नित्यानंद प्रभु इसके बावजूद भी उन पर बहुत कृपा की और स्वप्न में दर्शन दिए कि इनको इनके प्रति तुम उनको डांटो मत, उनको क्षमा कर दो। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु पति जीवों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के लीला में सहयोग देने आए हैं, सेवक भगवान के रूप में हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के करुणा को और आधार देने के लिए, भूमि तैयार करने के लिए पति जीवों को ज्यादा से ज्यादा उद्धार हो, इसीलिए उन्होंने याद दिलाया चैतन्य महाप्रभु को। जब जगाई मधाई के प्रति रोष किए तो कहे कि नहीं नहीं, आप अस्त्र धारण नहीं करेंगे, आप तो हरिनाम के द्वारा जीवों का उद्धार करने आए हैं। नित्यानंद प्रभु उनको याद दिलाए कि आप पतित पावन हैं, आप इस अवतार में कोई आयुध नहीं धारण करेंगे, आप हरिनाम के द्वारा जीवों का उद्धार करने आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु हैं और इसी करुणा को दया को बांटने के लिए आए हैं, पति जीवों का उद्धार करने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
जय श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। गुणिताय भगवान की जय। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय।